नमस्कार, मैं हूं राजीव। दोस्तों, डॉक्टर स्नेहा की कोशिशें रंग ला रही हैं। प्रतापपुर में बदलाव की जो लहर वो लेकर आई थी, उसका असर ज्यादातर लोगों की जिंदगी पर हुआ है। प्रतापपुर बदल रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि डॉक्टर स्नेहा के साथ आप थे। आपने उनके अटूट इरादों में विश्वास दिखाया, जिससे वो इस राह पर आगे बढ़ती ही गई। तो चलिए दोस्तों, उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूं की 63वीं कड़ी। बाबा पहलवान इंस्पेक्टर मधोक से मिलने पुलिस स्टेशन आता है। मधोक बाबा को एक लिफाफा देता है जिसमें नोट है। मधोक बाबा को कहता है कि ये वही पैसा है जो उसने गुंडों को दिया था माथुर जी पर हमला करने के लिए, और उसका आदमी अपना जुर्म कबूल भी कर चुका है। बाबा इस बात से साफ इनकार करता है। उसका कहना है कि दिगंबर जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और उसका वो आदमी दिगंबर से भी मिल बैठा है। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि अपनी करनी कभी न कभी भुगतनी तो पड़ती ही है। तो बस मधोक बाबा को गिरफ्तार कर लेता है। मानवता अस्पताल की बागडोर, इंसानियत क्लिनिक, सुकून स्वास्थ्य केंद्र, इन नई जिम्मेदारियों के साथ डॉक्टर स्नेहा एक और सफर पर निकली है। डॉक्टर जैन और डॉक्टर स्नेहा के बीच मानसिक रोग के बारे में बात चल रही है। मानसिक रोग हमारे समाज की एक ऐसी परेशानी है जिसे लोग बीमारी मानते ही नहीं, उल्टा मानसिक रोगी के साथ किसी भी दूसरे इंसान जैसा आम बर्ताव किया ही नहीं जाता। डॉक्टर स्नेहा मानती है कि लोगों को समझाने की जरूरत है, मानसिक रोगी को दिल से अपनाने की जरूरत है। डॉक्टर जैन चाहते हैं कि सुकून स्वास्थ्य केंद्र में एक विभाग मानसिक रोगियों के इलाज के लिए भी हो। डॉक्टर स्नेहा भी यही चाहती है, लेकिन बजट की कमी के कारण ये उन्हें मुश्किल नजर आता है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। तो बस डॉक्टर जैन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वो अपनी जमा पूंजी मानसिक रोग के इलाज के लिए नए विभाग में लगाना चाहते हैं। डॉक्टर जैन एक चेक स्नेहा को देते हैं और मानवता से हमेशा के लिए जाने की अनुमति लेते हैं। वो अपनी बेटी के समान डॉक्टर स्नेहा को सब जिम्मेदारियां सौंप कर जा रहे हैं। वहां आज एक बार फिर प्रताप वाणी रेडियो पर बुआ जी और मुन्ना के साथ डॉक्टर स्नेहा मौजूद हैं, सत्य की अदालत में एक और मुद्दे के साथ। मामला है एक पति और पत्नी का, राजेश और अल्पा का। इस बार केस पति ने किया है अपनी पत्नी पर। वो सदमे में है कि उसकी पत्नी ने हाथ उठाकर इशारा किया था कि वो उसे थप्पड़ मारेगी। दोस्तों, मामला तो वाकई गंभीर लगता है। बात मारपीट की है। अब तो पूरा मामला समझना पड़ेगा। अल्पा अदालत को बताती है कि उसके 12 साल के बेटे ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की। अदालत हैरान है कि इस बात का इस मामले से क्या संबंध। लेकिन दोस्तों, संबंध है। अल्पा का पति उसके साथ काफी मारपीट करता है। उसका और उसके परिवार का मानना है कि पत्नी को काबू में रखने के लिए हफ्ते में एक दो बार उस पर हाथ उठाना ही चाहिए। उफ, कैसी मानसिकता है ये। हैरानी है कि राजेश के वकील साहब भी इस बात के पक्ष में हैं। वो मानते हैं कि हर परिवार की यही कहानी है। दोस्तों, राजेश ना सिर्फ अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता है, बल्कि अपने 12 साल के बच्चे के दिमाग में भी ये सब डाल रहा है। सोचिए, जब बच्चा अपने घर में हर दिन ऐसी हिंसा होते हुए देखता है, जिसने यही सुना और समझा कि औरत पर हाथ उठाना मर्द का हक है, ये तो मर्दानगी की निशानी है, तो सोचिए वो बच्चा आगे चलकर खुद भी ऐसा क्यों नहीं करेगा। बच्चे जो देखते हैं वही तो सीखते हैं। अल्पा नहीं चाहती कि उसका बेटा भी आगे चलकर ऐसा ही बने। यही कारण है कि उसे अपने पति को एहसास दिलाना पड़ा कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है, उसमें हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राजेश के वकील साहब अब भी मामले की गहराई समझ नहीं रहे। वो अदालत को आंकड़े बता रहे हैं कि खुद महिलाओं की आधी आबादी ऐसा मानती है। हालांकि राजेश समझ गया, वो समझ गया कि पति को कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाए। राजेश अपनी पत्नी से माफी मांगता है। दोस्तों, मारपीट न सिर्फ एक पत्नी के शरीर पर वार करती है बल्कि उसे अंदर से तोड़ भी देती है, उसके आत्मविश्वास पर हमला करती है। औरत खुद को मर्द से कम आंकती है। तभी तो दोस्तों कितनी बार सुनने में आता है कि एक पत्नी ने हिंसा को अपनी नियति मान लिया है। वो मानने लगती है कि पति का उस पर हाथ उठाना बिल्कुल भी गलत नहीं।